Yes, Maharaj. Yes, Maharaj, we can start. I think devotees are still joining from other temple, but we can start the class, Maharaj. And would you like to do some kirtan, Maharaj?
Yes. It is a class. I am giving class from room. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Paradhari Yasodananda Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridhar Dhari Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridhar Dhari Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridhar Dhari Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Jai Radha Kunjavi Hari Radha Kunjavi Hari Radha
Radha
Radha Radha Radha Jai Jagannath Jai Jagannath Baladev Jai Subhadra जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य स्तोत्र सत्य से श्रीमद दिवान के सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य विभूति फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेसी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। NBCC पुणे की जय। श्री राधा कुंज बिहारी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। भगवद्वाणी श्रीमद भगवद्गीता की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंडेड डिवोटीज। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण महाराज।
राधे श्याम प्रभु प्लीज एक्सेप्ट माय ऑब्लिगेशंस एंड देवती पति प्रभु प्लीज एक्सेप्ट।
हरे कृष्ण।
ओके
महाराज, मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ, कई सारे बात जुड़ रहे हैं।
गलत परिचय दे रहे हो, मैं ही परिचय देता हूँ कि मैं इस्कॉन वृंदावन से हूँ और मेरे नाम है प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी। मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हूँ। मैं 1985 में दोनों दीक्षा हरिनाम तथा ब्राह्मण दीक्षा 6 महीने के अंदर मेरी दोनों दीक्षा हुआ था। बाद में मैंने संन्यास लिया 2008 में, 2008 में फिर मैंने संन्यास लिया और इसके बाद में बस यही मेरा परिचय है।
हमारा सौभाग्य है कि महाराज का हमको व्यक्तिगत संग प्राप्त होता है पुणे में, लेकिन अभी ये बीमारी के चलते हमको ऑनलाइन महाराज का संग प्राप्त हो रहा है। और महाराज का जो बल है गुरु निष्ठा के ऊपर और वैष्णव कृपा के ऊपर बहुत प्रेरणादायक है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में गुरु के प्रति निष्ठा का क्या महत्व है और वैष्णवों के संग का और वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने का कितना बड़ा योगदान है हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए, तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। महाराज विशेष रूप से हमने जब से पुणे में रथ यात्रा शुरू की 5 साल से, महाराज हर रथ यात्रा में आकर के हमको जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हैं, जगन्नाथ के प्रति हमारी भावना बढ़ाते हैं। तो सभी रथ यात्रा में महाराज का बहुत विशेष सहयोग रहा है और उसके कारण रथ यात्रा 5 साल इस साल नहीं हो पाया, लेकिन पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली चल रहा है। तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज महाराज का संग हमें प्राप्त हो रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद रेवती प्रभु,
महाराज जी को
मुझे शोक का आलोचना करने के लिए कहा गया। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। ये गीता के प्रसिद्ध श्लोक है, नवम अध्याय के जो परम गृह ज्ञान, इससे ये 26 नंबर श्लोक है। विशुद्ध भक्ति की व्याख्या इस श्लोक में की गई और बहुत अच्छे श्लोक है। इस श्लोक में तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो मैं कुछ पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा फिर चर्चा प्रारंभ कर देंगे। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मनः। शब्दार्थ पत्रम पत्ती, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल, यह जो कोई, मैं मुझको, भक्त्या भक्तिपूर्वक, प्रयच्छति भेंट करता है, तत वह अहम मैं, भक्ति उपहृतम भक्ति भाव से अर्पित, अस्नामी स्वीकार करता हूं, प्रयतात्मनः शुद्ध चेतना वाले से। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा सुमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तात्पर्य, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने की प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतना ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इसी से कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करता है, वह भगवान स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते, उन्हें किसी से भी नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट है। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावना में विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख दो बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण का पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं की जा सकते। भक्ति कभी अहेतु की नहीं होती, सॉरी भक्ति कभी हेतु की नहीं होती, अहेतु की होती। यह शाश्वत विधि है, यह परम ब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। पत्रं पुष्पं फलं त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मन। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो श्लोक में पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो परम सत्य व परम भगवान वो है कौन। और जैसे कुछ लोग परम सत्य को बा परम भगवान को निराकार, निर्गुण, निर्विशेष ब्रह्म के रूप में भी कुछ लोग मानते हैं, तो लेकिन ये श्लोक जो भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, वो निश्चित रूप में जो एक व्यक्ति विशेष है जो कि अर्जुन के समक्ष में है उपस्थित है और जिन्होंने श्लोक कह रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते जैसे हम प्रसिद्ध श्लोक अन्य देखते गीता में कि भगवान अन्यत्र कहते कि मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसिनी। मन में मेरी चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इसी प्रकार मैं तुझे सत्य वचन कह रहा हूं कि तुम मेरे पास अवश्य आओगे। तो यहाँ पर यदि कोई टीकाकार जो प्रसिद्ध दार्शनिक बा निर्विशेषवाद को मानने वाले जो लोग होते हैं वो कहते कि नहीं नहीं यहाँ पर जो कहा गया है ये कृष्ण के लिए नहीं कहा गया, कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, परम सत्य निराकार निर्गुण जो सर्वव्यापक ज्योति स्वरूप है वा प्रत्येक जो हृदय में निवास करने वाला जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म जो कि ज्योति स्वरूप है और उनकी उद्देश्य में कहा गया। वहां पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो ऐसे मत प्रदान करते हैं ये प्रकृत में इनको दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार ये जो साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़ा होकर अर्जुन के सामने और ये श्लोक कह रहे हैं और लोग सोचते कि नहीं ये श्लोक भगवान के व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए वो श्लोक के माध्यम से तैयार नहीं होते। तो इसलिए भगवान पहले तो हम जानना चाहिए कि किसकी भक्ति करना चाहिए। जो भक्ति हम करते हैं कहते हैं तो भक्ति का अर्थ भगवान है और भक्त है। भक्त ही भगवान की भक्ति करता है और भगवान एक व्यक्ति विशेष है जिसके प्रमाण शास्त्र में भूरी भूरी दी गई है। और गीता में यदि हम भगवान को श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो गीता को समझना संभव नहीं है। बार बार गीता में भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, अहं सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्विता। जो मैं ही समस्त सृष्टि के एकमात्र कारण हूँ, सब कुछ मेरे से उद्भूत हुआ है, इस परम सत्य को जो ठीक ठीक से समझ लेता है वो अवश्य भगवान की भजन में स्थिर हो जाता है, भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसलिए पहले हम इस श्लोक को समझने के लिए पहले समझना चाहिए कि कृष्ण ही परम भगवान है, स्वीकार करना पड़ेगा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं जिसको भागवत भी कहता है, जिसको गीता में भी भगवान स्वयं कहते मैं भगवान हूँ बार बार। तो इसलिए भगवान के व्यक्ति विशेष है, एक व्यक्ति है और भक्त जो भी वो भी एक व्यक्ति जो जो कि इनकी इनको इनकी प्रति भगवान के प्रति प्रेम के कारण उनकी सेवा में जोड़ता है। इसलिए जब हम भगवान को भगवान कौन है पहले जानना चाहिए। भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो पत्र पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयंग, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो किसको प्रदान करता है ना, भगवान श्री कृष्ण को यदि प्रदान करता है। कृष्ण जो स्वयं भगवान है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोको मलयंती जुगे जुगे। जो ये सब अन्य कई भगवान के अन्य रूप होने पर भी जो आदि रूप है, जो भगवान के स्वयं रूप है, वो है श्री कृष्ण की रूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में श्लोक उल्लेख करता है और भगवान स्वयं कहते कि यदि कोई विशेष रूप में कोई उपज कहते कि ये शब्द महत्वपूर्ण श्लोक में कि जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, भगवान उसकी उसी के हाथ से खाते हैं, उसी का सेवक जो अर्पण को स्वीकार करते हैं जो भक्त होता है। भक्त का अर्थ जो अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के सेवा में नियोजित करके रखा है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्न निर्मलम ऋषि के न ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते। जो अपने समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करके रखा है उसे भक्त कहते हैं। तो इसलिए जो भक्त जो इस प्रकार जो समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करके रखा है और जिसकी मन में किसी भी प्रकार के अन्य अन्य अभिलाषा नहीं है, वह इस भक्ति के दूसरे परिभाषा कहते हुए रूप गोस्वामी कहते कि अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा उत्तम भक्ति। तो उसे कहते कि जो जिसके मन में किसी अन्य प्रकार की अभिलाषा नहीं होता है उसके मन में एकमात्र अभिलाषा होता है कि जो कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करना। और जो साधारणतः तो कई लोग भगवान की शरण में जाते हुए तो उनकी उनसे कुछ भौतिक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, बस सुकृतिवान होने से भी भगवान पूरे से जब तक वो शरणागत नहीं होता है, शुद्ध भक्त नहीं होता, उसे स्वीकार नहीं करते। जैसे सुकृतिवान व्यक्ति भी भगवान की शरण में जाते हैं, अर्थ अर्थार्थी है, चतुर्विध भजते माम जना सुकृति अर्जुन अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन ये इसी यही जो जो पुण्यात्मा है सुकृतिवान, ये लोग ने जब शुद्ध भक्ति प्रारंभ करते हैं तो फिर भगवान उन्हीं की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, वो भक्त की स्थिति पर आने से जो शुद्ध भक्त बनते हैं। इसलिए भगवान कहते कि जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, विशेष करके जो मेरे शुद्ध भक्त जो मुझे अर्पण करता है, चाहे पत्र पुष्प फल या जल कुछ भी अर्पण करता है भगवान स्वीकार करते हैं। तो कैसे भगवान तो अर्जुन के समक्ष कृष्ण के रूप में उपस्थित थे, लेकिन हमारे सामने तो कोई भगवान ऐसे कहीं साक्षात कर कैसे हम उनको अर्पण करेंगे। यदि कोई भक्ति करता है हम जैसे तो उनको कैसे अर्पण किया जाता है, तो इसलिए हम जानना चाहिए कि भगवान अत्यंत कृपाणु होकर उनके अर्चा मूर्ति के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने हमसे सेवा लेने के लिए स्वयं विद्यमान है। इसलिए हमारे इस्कन के सुन मंदिरों में सब भगवान स्वयं विराजित है, राधा वृंदावन चंद्र के रूप में बा राधा कुंज विहारी के रूप में, वो हमारे समक्ष में अर्चा मूर्ति के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट है हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति विशेष है, तभी तो फिर हम इनको कुछ अर्पण कर सकते हैं। कोई निराकार निर्गुण निर्विशेष व्यक्ति ब्रह्म ऐसे कहाँ से हम इनको अर्पण करेंगे कोई चीज है। जैसे हम देखें वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी जब थे तो उनके सामने एक विशेष व्यक्ति कलकत्ता से आया था, और वो उनके पास में कुछ अलंकार वस्त्र और कुछ ऐसे देकर चला गया। उस दिन नृसिंह चतुर्दशी का दिन था। गोपाल भट्ट गोस्वामी तो मौन धारण करते थे, केवल भजन करते थे, हरे कृष्ण मंत्र के अलावा और कुछ बातचीत नहीं करते थे। तो बाद में उन्होंने जब देखा उनके पास तो कोई विग्रह नहीं थे, सालग्राम शिलाएं केवल थे, तो उनकी आंख से अश्रु आ गया कि ये व्यक्ति ने मुझे इतनी वस्त्र अलंकार सब अर्पण कर दिया, लेकिन मैं पहनाऊ किसको, ये सालग्राम शिलाओं को तो धारण नहीं करा पाऊंगा। तो इसलिए उनकी भावना उन्होंने कहने लगे, हे प्रभु आप तो प्रह्लाद के लिए खंभे से प्रकट हो गए, और आप यदि मेरे सामने से ही प्रकट होते, मैं वस्त्र अलंकार आपको धारण कराता। इसीलिए भगवान ने राधा रमण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, अर्चा विग्रह के रूप में स्वयं प्रकट हुए वो सालग्राम से ही। अभी फिर उनको वस्त्र अलंकार पहनाकर उनके सभी प्रकार की सेवा की व्यवस्था की है। इसलिए भगवान ये सेवा केवल तुमने इच्छा उन्हीं के हाथ से स्वीकार करते हैं जो भक्त है। भक्त हुए बिना भगवान कुछ नहीं स्वीकार करते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि केवल भगवान भक्तों के हाथ से जो कुछ अर्पण किया जाता है तो उसी वस्त्र को स्वीकार करते हैं। तो भी अपने भक्तों के भेंट प्रेम तथा स्नेह से विनिमय में स्वीकार करते हैं, नहीं तो सब कुछ तो उनका ही है। तो भगवान यदि कोई कुछ लोग कहते कि नहीं, अरे भगवान को क्या हम अर्पण करेंगे, भगवान तो सब तो उनका ही है, आप लोग ही हमको वेद पढ़ाते हो और उपनिषद पढ़ाते हो और कहते कि ईसा भाष्यम इदम सर्वम जत्किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तन भुंजिता माम विध कश्यसि धनम, कि जो कुछ हमें देखते हैं ये सब कुछ भगवान का वस्तु है, और भगवान सब कुछ तो हमको हमारे कोटा के हिसाब से हमारे उपभोग के लिए दे दिया, हम इसको भोग करते हैं, हम फिर भगवान को क्या देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्त है वो देता है। जैसा ही प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई पिताजी होता है, पिताजी अपने बेटों के अपने बच्चों के लिए घर में जो थे 10 बेटे तो सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाता, मार्केट से बाजार से कुछ ना कुछ लेकर आता है, बा कोई खाद्य पदार्थ भी लाता है, कोई मिठाई लेके आता है। तो उनमें से कोई एक बेटा होता है जो कि बड़े पिताजी को प्रेम करता है, और जो उसको उसके लिए जो मिठाई लाए थे वही मिठाई से एक मिठाई लेकर पिताजी को अर्पण करता है, पिताजी आप भी खाइए ना, आप खाइए। तो उनको जब अर्पण करता तो खाता है, पुत्र का स्नेह को पिताजी स्वीकार करता है। तो उसी प्रकार यदि कोई वस्तु सब कुछ भगवान का ही होता है, तो फिर भी यदि कोई उसी भगवान के दिया हुआ वस्तु को भी यदि भगवान को अर्पण करें प्रेम से, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और परोक्ष में कोई पूरे सब वस्तु प्राप्त होने के बाद फिर उसको किसी को न देकर पूरा एकांत में उसको उपभोग करना चाहता है, उसी को राक्षस कहते हैं। लेकिन जो प्रकृति में भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, प्रेम रखता है, और उन्हीं की वस्तु होने पर भी भगवान को फिर वो वस्तु उन्हीं को अर्पण कर देता है, सब कुछ कहता प्रभु आपका ही है। और फिर अपने शरीर को धारण करने के लिए भगवत इच्छा से जितनी आवश्यक है उतनी के बल ही शरीर धारण करने के लिए स्वीकार करता, और समस्त संपत्ति को बा जो कुछ भगवान ने दिया इसको भगवान की सेवा में भगवान के प्रचार में ही नियोजित कर देता है, तो भगवान को अति प्रिय होता है। इसलिए कोई बोलेगा हमारे पास कुछ कोई भी वस्तु नहीं है, हम क्या देंगे, हम गरीब सबसे गरीब व्यक्ति हैं, गरीब से गरीब है, हमारे पास में तो कोई धन का मौजूद नहीं है, हम कहाँ से भगवान को क्या दे सकते हैं? ये संभव नहीं है भगवान को कुछ देना, लेकिन लेकिन भगवान कहते कि तो कुछ नहीं दे पाओगे तो ये वस्तु सब है ना आपके पास, कोई कोई भी कितने बड़े भिखारी व्यक्ति को भी ये सब प्राप्त हो सकता है, किसी भी व्यक्ति प्राप्त हो सकता है, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जड़ हो, हाँ कुछ भी कोई वस्तु हमको अर्पण। यदि कोई विशेष महान सेठ व्यक्ति है तो वो तो भगवान को बहुत कुछ करोड़ रुपया के मंदिर बना सकता है और कई प्रकार के उनके प्रचार कार्य में धन दे सकता है। लेकिन जिसके पास यदि कहेगा कोई मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है तो मैं क्या दूंगा, तो फिर भगवान कहते हैं तुम ये वस्तु तो दे सकते हो, पत्रं पुष्पं फलं त्वयं। आप पहले भक्त शब्द दो बार इस श्लोक में उपयोग की गई है, जो में भक्तिया प्रयोजती और तदहंग भक्ति उपलब्धम, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान केवल भक्त के हाथ से स्वीकार करते हैं, कोई अभक्त व्यक्ति देने से कोई स्वीकार नहीं करते हैं। दुर्योधन का मेवा त्याग साग विदुर घर खाई, भगवान दुर्योधन से जैसे नास्तिक व्यक्ति जो अपने घमंड के कारण स्वयं को अहंकार की वशवर्ती होकर और आप स्वयं को मालिक समझता है, और तो ऐसे घमंडी व्यक्ति का उपहार को भगवान नहीं स्वीकार करते, परंतु विदुर जैसे व्यक्ति के जो उपहार को स्वीकार कर, जैसे अभी हम चर्चा करेंगे तो किस प्रकार भगवान इस वस्तु को स्वीकार करते हैं। कोई कुछ भी नहीं है तो एक पत्ता भी दे सकता है, लेकिन कौन सा पत्ता हमें भगवान को अर्पण करना है तो उसको जानना चाहिए। कि व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान है तो आपको पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण को हम कौन सा पत्ता अर्पण करें, चाहे पंडित से बास कोई भक्तों से सलाह लेकर वो जान शास्त्र पढ़ता है, विशेष में भारत में जिनकी जन्म हुआ है वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कौन सा पत्ता अर्पण करना है, जानते हैं कि तुलसी पत्ता भगवान के चरण में चढ़ाना है, थोड़ा गंगा जल तुलसी पत्ता पवित्र जल और पत्ता। हम देखते हैं कि इसकी कई उदाहरण है, कौन भगवान को एक पत्ता देकर अर्पण करके संतुष्ट किया। हमें अभी आज के सभ्यता में देखते कि आज 500 साल पहले जो अद्वैत आचार्य इस धरा पर थे तो उन्होंने किस प्रकार केवल गंगा जल और तुलसी पत्ता अर्पण करके ही भगवान को, तो फिर उनको पूरे गौरांग महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है स्वयं कृष्ण ही, तो उनको अवतीर्ण कराकर धरा पर लाए। पत्ते को थोड़ा सा पत्ता खाकर भी भगवान भक्तों के हाथ से भी प्रसन्न होते हैं। जैसे वे पांडव लोक ने जब अज्ञातवास में वनवास में काम्य वन में जब निवास करते थे उसमें अज्ञान मान केवल वनवास 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास था, उन दिनों में उन्होंने वनवासी थे तो काम्य वन में रहते थे, तो उसी समय में दुर्वासा मुनि किसी कारण से मन ने जाकर दुर्योधन के आतिथ्य स्वीकार करके ही हस्तिनापुर में दुर्योधन को पास में बहु 1 महीने रहकर उसको बहुत आशीर्वाद कृपा करते थे। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि जैसे आप हमको हमारे पास आए तो इसी प्रकार पांडवों के पास भी जाना चाहिए, उनको भी आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन उनके मन में कपटता था कि पांडव लोग इस समय वन में है, वो क्या दे पाएंगे, हाँ ये नहीं दे पाएंगे, जब इनको खिला नहीं पाएंगे तो ये अभिशाप देके उनको सर्वनाश करेंगे। तो ऐसे भावना लेकर दुर्योधन में जो भेज दिया दुर्वासा मुनि को उनके पास, और उनको कहा कि ठीक 12 बजे दिन में 12 बजे दोपहर के बाद आप पहुंचना, मध्याह्न के बाद पहुंचना, क्योंकि पांडव लोग प्राय मध्याह्न के समय में भोजन कर लेते हैं और उसके बाद तो फिर जो और कुछ उनके पास होता नहीं। उसी समय ये 60,000 शिष्य के साथ दुर्वासा जो पांडवों के पास पहुंचे, और युधिष्ठिर महाराज विधि जैसे आतिथ्य सत्कार करते हुए उनको कहे कि ठीक है आप हमारे घर में आज भोजन करेंगे, भोजन आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि जानते थे कि द्रौपदी के पास में अक्षय पात्र था, वो कई करोड़ों लोगों को भी खिला सकती है। लेकिन उन दिन तो आज द्रौपदी भी खा चुकी थी, द्रौपदी खाकर पात्र को धोकर उसको स्थान पर रख दी थी, तो दुर्वासा ने कहे थे कि हम स्नान करके आते हैं नदी में यमुना में, आप प्रसाद प्रस्तुत करके रखिए। तो जब जो युधिष्ठिर महाराज इस संवाद को पहुंचाए द्रौपदी के पास, दुर्वासा 60,000 शिष्यों के प्रस्ताव प्रसाद के लाना पड़ेगा, तो द्रौपदी तो अब सिर में हाथ देकर कही अभी तो मुझे संभव नहीं है, मैं खाकर धो के रख चुका हूँ, जब तक मैं नहीं खा भोजन किया होता तब तक मैं किसी को खिलाने में समर्थ होता, लेकिन अभी तो मैं खा के ऑलरेडी बर्तन को धो के मैं रख दिया, इसलिए भगवान को स्मरण करने लगे। कृष्ण को जब स्मरण करने लगे द्रौपदी और पांडव लोग, फिर भगवान स्वयं आए कि ये देखो द्रौपदी मैं बहुत भूखा हूं कुछ खिलाओ। तो द्रौपदी ने कहा हमारा तो वही समस्या है, दुर्वासा 60,000 शिष्य के साथ आए भोजन के लिए, अब स्नान के लिए गए लेकिन हमारे पास में कुछ भी नहीं है, मैं खाकर बर्तन धो चुका। भगवान कहते नहीं, कुछ ना कुछ बर्तन में होगा, देखो क्या बनाए थे ना भात और साग। बोले जिस पात्र में साग है, साग का रंधन के तो साग के पात्र को लाओ, तो उस पात्र में एक कोने में थोड़ा सा एक साग की पत्ता लगा था, क्योंकि ये भक्तों के संग भक्तों के द्वारा ये रंधन की गई थी, अर्पण किया गया था, तो भगवान को भी अर्पण करके खाए थे। तो भगवान ने वही एक साग की पत्ता को खा के ही प्रसन्न हो गए, जो कि द्रौपदी का जो रंधन पात्र में जो एक साग की पत्ता हो गया है, बड़े स्वादिष्ट था ये साग। हाँ, लेकिन दूसरे मुहूर्त में उन्होंने थोड़ा साग पे से चिपा फिर कुली कर बाहर फेंक दे, अरे मेरे पेट का गड़बड़ी हो गया। तो सभी दुर्वासा और 60,000 शिष्य सभी के पेट गड़बड़ी हो गया। वो लोग ने इस समय में भगवान कहे क्या भेज दो, जाओ भीम जाओ सबको बोला कि लाओ प्रसाद रेडी हो गया। तो कोई कुछ नहीं, कैसे भगवान कह रहे, युधिष्ठिर महाराज भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो भगवान कहे जाओ जाओ भीम बोलाओ इनको सब प्रसाद दे। तो भीम जब पहुंचा देखे कि ये सब सब दौड़ रहे हैं, मैंने नदी में स्नान करके आ रहे, फिर पेट गड़बड़ी, फिर जा रहे हैं जंगल में जो पेट साफ करने के लिए, फिर आते हैं फिर नदी में स्नान करते फिर दौड़ते जंगल में। तो ये देखकर पांडवों ने अपने भीम ने भीम को देखकर फिर वो भयभीत हो गए, कहे कि अरे ये भक्त लोग है, पहले मेरी हालत एक बार हुआ था अम्बरीश महाराज से जब उनको मैं अपमानित किया था, और आज पांडव लोगों के साथ में ये तो यदि ऐसा ही कुछ हो गया सर्वनाश होगा। तब इस सिस्टम के साथ में भीम बुलाने पर भी और सुने नहीं, सीधे सीधे भाग रहे थे वहां से। तो इस प्रकार पत्ता हम देखेंगे, छोटा सा साग की पत्ता खाकर भगवान ने प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्त के पास से। कोई एक तुलसी की पत्ता जड़ यदि वो भगवान के भक्त होता है, भक्ति के साथ अर्पण करता है, भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन कोई 56 भोग बनाकर भी बड़े थाट बाट में अहंकार के साथ दुर्योधन जैसे व्यक्ति के हाथ से भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, कोई भी वस्तु उनको अर्पण करने से स्वीकार नहीं करते। भगवान को हम कभी भी धोखा नहीं दे सकते, प्रत्येक अंतर्ज्ञानी है, भावग्राही है, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण की जो हमारा हृदय की भावना को जानते हैं, इसलिए जब देखते हैं कि हमारा हृदय पूरा उनके प्रति भक्ति की भक्ति भावना में उत्प्रत है, हमें प्रेम की भाव जो कुछ उनको प्रेम से ही अर्पण करते हैं तभी तो भगवान स्वीकार करते हैं। नहीं तो हमारे मन में थोड़ा सा भी कपटता रहने पर या किसी अहंकार रहने पर भगवान कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सरलता ही वैष्णवता, वैष्णव बड़े सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, और सरल हृदय में प्रीतिपूर्वक जो भगवान को अर्पण करते हैं भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। ऐसे कई उदाहरण है, पत्र के माध्यम से भगवान को प्रसन्न की पत्र अर्पण करके भी प्रसन्न की जा सकती है। पुष्प पुष्प के इसके तो प्रसिद्ध उदाहरण है भागवत में गजेंद्र की, गजेंद्र जो कि महाराज इंद्रदिम्न, वो इंद्रदिम्न ये भिन्न इंद्रदिम्न है, जिन इंद्रदिम्न ने जगन्नाथ जी को प्रकट किए थे वो इंद्रदिम्न अलग थे, और ये जो पुष्प जो हस्तिराज थे गजराज, ये इंद्रदिम्न जो पूर्व पूर्वजन्म इंद्रदिम्न महाराज इंद्र, ये दूसरे इंद्रदिम्न है जो भी, लेकिन ये भी भगवान के महान भक्त थे। अगस्त मुनि के किसी किसी का को अभ्यर्थना ठीक से नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये ध्यान ध्यान मग्न थे, पूजा में व्यस्त थे, तो इसलिए अगस्त्य मुनि जब उनके सामने आए तो उनको स्वागत नहीं कर पाए थे। अगस्त्य मुनि ने क्रोधित होकर उनको अभिशाप दिए थे हस्तिजोनि में जाने के लिए। लेकिन हम जब भी किसी मनुष्य शरीर त्याग कर भी कोई अन्य जोनि में जाने पर भी भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है, भक्ति हमेशा जहां पर हम इस जन्म में भक्ति करते हैं जहां तक, और फिर अगला जन्म में वहीं से भक्ति शुरुआत होती है, भक्ति की विनाश नहीं होता है। इसीलिए वो अभी अगस्त्य मुनि के अभिशाप से वो हस्तिजोनि में तो गए, लेकिन भक्ति की भगवान की भक्ति करने की जब प्रवृत्ति सुप्त भाव से इनके हृदय में था, इसलिए वो जब मगर ने इनकी पैर को पकड़ा, जो गजराज के रूप में उन्होंने हस्तिनियों के साथ जड़ विहार कर रहे थे, तो उनको उनको तो मगर ने पकड़ा, उनके पैर को पकड़ा, तो उन्होंने पूर्व की सुकृति के कारण, पूर्व भक्ति के कारण सहज है कि इनको फिर भगवान को स्मरण आया। तो ये कमल की फूल अपने सुंड में तोड़कर भगवान को अर्पण किए और भगवान को प्रार्थना किए, उसी से भगवान उनको उद्धार, भगवान ने इनको केवल उसी एक कमल के फूल के स्वीकार करके इतनी व्यग्र में आए, यहां तक कि कहा जाता है कि गरुड़ को भी पछाड़ दिए, बोले ये गरुड़ भी बहुत बहुत स्लो जा रहा है, गरुड़ जी को पछाड़ कर भगवान ने सीधे भागे, अकेले ही भागे, भाग कर आकर अपने सुदर्शन से तुरंत ही उस मगर की गर्दन को काट लिए और इस मगर के चुंगल से गजराज को मुक्त कर दिए। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं एक केवल फूल अर्पण करके भी ये प्रसन्न में गजराज ने, गजेंद्र ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। कई स्थान पर ऐसे फूल की चर्चा की गई है, फूल का कैसे भगवान अपने भक्तों की स्वीकार करते हैं। जगन्नाथ जी की भक्त था रघुदास, इन्होंने एक माला सोहस्त में भगवान जगन्नाथ जी के लिए बनाया, एक माला जो बहुत सुंदर मल्ली फूल में, सुगंधित फूल में निर्माण अपने हाथ से बनाया, लेकिन उसके पास में तो धागा नहीं था, इसलिए उन्होंने केला के वृक्ष के जो ऊपर का जो छिलका से वहीं से धागा जैसे बनाकर उसी से माला बनाया था। जब लेकर पुजारी को अर्पण किया कि जगन्नाथ जी को देने के लिए, पुजारी ने कहा अरे इसमें धागा नहीं है, क्या ये केला की छिलका से लगाया तुम माला बनाया, ये माला नहीं चढ़ेगा, कह के फेंक दिया माला। तो रघु ने बहुत दुखी हुआ, उस जो फेंक दिया माला उसको लाकर अपने सामने बैठा था, वो भिखारी के रूप में था, सिंहदरा जी के सामने बैठ रहा था, तो उन्होंने जगन्नाथ जी को कहा जगन्नाथ आप मेरी भक्ति स्वीकार नहीं किए, मैं तो गरीब हूं, इसलिए मैं आपको एक फूल, तो केवल एक फूल का माला अपने हाथ से, मेरे पास तो धागा नहीं था, ऐसे केला की बड़कल से बच्चे वहीं से ही मैं बनाया, उसी से ही धागा बना के, और पुजारी स्वीकार नहीं कि आप स्वीकार नहीं किए माला, ये कहकर बहुत रोया और उस दिन भोजन नहीं किया। पुजारी ने जब जगन्नाथ जी को उसके बाद श्रृंगार कर रहे थे और जितनी भी माला चढ़ाने लगे, जगन्नाथ एक भी माला स्वीकार नहीं किए, सारे माला जितनी माला उनके शरीर में डालते सब नीचे आके नीचे गिर गए, जगन्नाथ सब फेंक देते, सब बड़े डर गए। पुजारी लोग जो प्रार्थना किए जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी ने कहे देखो मेरे भक्त ने फूल लेके आया था, फूल के माला हस्त में बनाकर बड़े प्रेम से भक्ति से लेके आया था, और तुम लोग अहंकारी आए उसकी हाथ उसी माला को मेरे मेरे को न चढ़ाकर मुझे अर्पण किए बिना उसको फेंक दिया, जब तक उस माला को लाकर मुझे नहीं चढ़ाओगे मैं तुम्हारे कोई दूसरे माला कभी भी पहनने वाला नहीं। तो सारे पुजारी लोग आकर फिर रघुदास को माफी मांगे और उसी माला को रघु से लेकर फिर इसको जो जगन्नाथ जी को अर्पण किए, फिर जगन्नाथ अन्य जितने माला था फिर उसको भी स्वीकार किए। इसलिए पुष्प भगवान को कोई भक्ति के साथ कोई एक सुगंधित पुष्प व पुष्प की माला अर्पण करता है, स्वीकार करते भगवान इसको बहुत आदर के साथ स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं कि हमारे पास धन है तो हम बहुत कुछ करोड़ों रुपया की फूल लाकर हम फूल बांग्ला बना सकते हैं, सब ठीक है, जिनके पास ऐश्वर्य है ऐश्वर्य भी अर्पण करने से भगवान स्वीकार करते हैं, प्रचार के लिए सब जरूरी है। लेकिन यदि किसी के पास कोई नहीं है तो वो भी एक फूल प्रेम से अर्पण करता है, सोहस्त में फूल तोड़कर माला बनाकर देता है, भगवान स्वीकार। ऐसे बुरी कई उदाहरण भरा हुआ है, ऐसे भगवान किस प्रकार भक्त के हाथ से पुष्प भी स्वीकार करते हैं। तो लेकिन हमें जानना चाहिए कि भगवान कौन सा पुष्प भगवान को प्रिय है। भगवान हर प्रकार के पत्ता जैसे भी स्वीकार नहीं करते हैं, उसी प्रकार हर प्रकार के फूल भी भगवान को प्रिय पुष्पाणी, जो पुष्प भगवान को प्रिय है हमें जानना चाहिए, और साधु से शास्त्र से गुरु से जानना चाहिए, और उस फूल को प्रीतिपूर्वक अर्पण करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक धुतरा फूल लेकर दोगे जगत माने भगवान विष्णु को अर्पण करोगे, भगवान इसको स्वीकार नहीं करते हैं। थोड़े कोई कभी एक भक्त ने किसी को एक धुतरा फूल छोड़कर प्रभुपाद जी को दिया, कोई विदेशी भक्त जानता नहीं तो धुतरा फूल दिया प्रभुपाद जी, दो फूल धुतरा फूल दिया, तो प्रभुपाद जी ने दोनों धुतरा फूल को अपने दोनों कान में धारण करके ही शंकर जी की तरफ सिर को हिलाने लगे। लेकिन भगवान विष्णु को अर्पण किए बा कृष्ण को अर्पण करने के जो फूल, यदि कोई प्रेम से एक फूल तोड़कर भी भगवान को अर्पण करता है, तब भगवान के लिए एक छोटा सा माला बनाकर भी देता है, प्रीतिपूर्वक भगवान इसको स्वीकार करते हैं। पत्रंग पुष्पंग जो कि जो कुछ अर्पण करते हैं, जैसे वृंदावन में गोस्वामी लोग थे और प्रेम में जो कुछ मिलता है भगवान को अर्पण करते थे। जैसे सनातन गोस्वामी के पास में मदन मोहन थे, उन दिनों में वो तो दिन था जब वो राजमंत्री थे और बहुत ऐश्वर्य था, आज तो वृंदावन में रहते थे वृक्ष के नीचे द्वादश आदित्य टीला में जंगल में रहते थे, तो इसलिए मदन मोहन को एक बस कभी कभी पेड़ में ही टांग देते झूली में, कभी यही खड़ा करके रखते थे, और जो कुछ थोड़ा सा कोई फूल वृंदावन के तोड़कर उन्हें चढ़ाते थे अर्पण करते थे, उसी को पहन उसी को धारण करके ही भगवान बड़े प्रसन्न रहते थे। जो भी माधुकरी करके थोड़ा रूप जो आटा के रूप गुला ऐसे ही आज भी मदन मोहन मंदिर में देते हैं, कच्चा ने आटा को ऐसा ही पानी में घुल कर उसमें नमक डालने के लिए भी उनके पास नहीं होता था, नमक भी नहीं होता था, उसी को आग में जलाकर आज मदन मोहन को खिलाते थे, क्योंकि उनके पास में अनन्य भक्ति था, भगवान को स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार जब वृंदावन के जंगल के जो फूल है गोस्वामी लोग उसी को अर्पण करके ही भगवान प्रसन्न करते थे। पत्रंग पुष्पंग फलंग कोई फल भी देता, कोई तो भगवान कहते मुझे कोई फल भी अर्पण करता है, फल को मैं स्वीकार करूं, कोई भी कुछ नहीं है तो कोई फल तुम्हारे घर में कोई फल का वृक्ष है वा कोई तो उसको मुझे अर्पण कर सकते हो। जैसे ही वा कोई नहीं तो जंगल से इकाठी करके ही माता सबरी की तरफ हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं फल। जैसे भगवान रामचंद्र जी की महान भक्तिमती स्त्री थी जो रामचंद्र जी की भक्ति करती थी, अब सब प्रसिद्ध कहानी है रामायण के आप सब जानते हैं, कि सबरी ने अपने गुरु से सुना था कि भगवान रामचंद्र जी ने उस उनके आश्रम में कभी पधारेंगे, इसलिए उन्होंने सालों सालों प्रत्येक दिन जाकर जंगल से बेर सब इकाठी करके ही लाता था, बुरी में भर भर के रखता था, भगवान आएंगे तो इनको अर्पण करूंगी, एड़े भाव ऐसे ही प्रेम की भावना से इकाठी करते थे। कई सालों के बाद एक बार जब रामचंद्र जी ने साक्षात प्रकट पधारे उनके आश्रम में, तो उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को उपयुक्त आसन में उसके पास जैसे आसन था लकड़ी के आसन में उनको बैठाया और उनके चरण हस्त चरण को प्रक्षालन के बाद उनको अवश्य वही बेर बुरी लाकर उसी से ही बेर भगवान को अर्पण कर रही थी। फिर वो बेर तो कौन सा खट्टा है कौन सा मीठा है कौन सा तीखा है उसको पता नहीं था, इसलिए माता जी ने उसको एक एक बेर को थोड़ा चखती थी, जो स्वादिष्ट मीठा है उसी को भगवान को चक्कर फिर भोग देती थी। लक्ष्मण से क्रोधित होकर कहे कि यारे तू क्या कर रही, मेरे प्रभु को तू झूठन खिला रही। लेकिन माता सबरी ने अड़िग रही, कहे कि क्या मेरा प्रभु प्रभु को मैं और खट्टा खट्टा तीखा कसा ये सब दे सकता, मैं तो झूठन कहा दे रही हूं, मैं तो देख रहा हूं कि कौन सा बेर मीठा है उसी को प्रभु को दे रहे। रोने लगी, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहे कि देखो लक्ष्मण ये सबरी की भाव को तो देखो, इसके मन भाव को, मैं भावग्राही हूं, भक्तों की भाव है अंतकरण की जो भावना है उसी को मैं स्वीकार करता हूँ। ये बाह्य क्या देता मुझे वो बड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन अंतकरण की उसकी जो भावना है, इसकी भावना है मुझे मीठा खिलाने की, ऐसे कहकर रामचंद्र जी ने स्वीकार किए। ऐसे वर्णन आता है कि एक दिन जब उन्होंने भगवान रामचंद्र जब पूरे वनवास 14 साल वनवास के बाद जब अयोध्या में पधारे सीता जी को लेकर सभी के साथ, तो प्रत्येक माताएं ने कौशल्या सुमित्रा कैकेयी सभी अपने अपने भवन में भगवान को निमंत्रण किए। माता सीता जी ने भी स्वयं एक दिन भगवान के लिए सहस्त्र में कुके मने रंधन करके भी भगवान को खिलाए। तो नारद जी पधारते हैं तो वो आकर भगवान रामचंद्र जी को पूछते हैं, प्रभु में एक प्रश्न है मेरा, तो आप मेरे प्रश्न के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान कहे जरूर। तब उन्होंने पूछा कि हे प्रभु आप मुझे सच सच बताइए, आप जी माता को कौशल्या की रंधन को मैंने हाथ से भी भोजन किए, कई की माता कैके की हाथ से भोजन किए, सुमित्रा के हाथ से भोजन किए, उनके रंधन को स्वीकार किए, स्वयं सीताजी ने भी आपको खिलाए, लेकिन माता सबरी भी, मैं सुना था आप सबरी के हाथ से भी खाए थे, जंगल में बेर खाए थे, सबरी आपको झूठा बेर खिला रही थी, तब मुझे सच बताइए किसकी हाथ की खाना खाकर आप अधिक तृप्त हो गए थे। तब भगवान हाथ खान ऐसे ही प्रकार रहकर बड़े ऊपर को उद्धम होकर ऊपर सोच में पड़ गए, उनके आंख से अश्रुओं की धारा टपकने लगा। उन्होंने कहे कि नारद क्या पूछा मुझे भगवान ने, रोते रोते कहे कि जैसे माता सबरी ने मुझे खिलाई थी वो आज भी मुझे स्मरण है। तो इस प्रकार भगवान को कोई एक फल भी अर्पण करता है, ऐसे कई कहानी, कई भक्तों की कहानी है, तो पत्रंग पुष्पंग फल भी यदि अर्पण करता भगवान स्वीकार करते हैं, यदि कुछ भी नहीं आप भगवान को भगवान कहते तोयम मुझे जल अर्पण करो, थोड़ा सा जल भी भगवान को अर्पण किया जा सकता है भगवान को कोई लेकिन हमारे पास में इतनी बुद्धि होना चाहिए कौन सा पानी जल हमें भगवान को अर्पण करें, पवित्र तीर्थों की जल हमारे भारतवर्ष में गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी ये सब पवित्र नदी के जल जो भगवान को प्रिय होता है, तो उसे ही पवित्र नदी के जल व स्वच्छ जल जो पीने के लायक बड़े भक्ति की भाव से भावना से जो भगवान को उस जल में स्नान कराता है, प्रत्येक दिन हम विग्रहों को रखते हैं उनको स्नान कराते हैं और उनको पीने के लिए भी पानी अर्पण करते हैं, पानी की माध्यम पानी की सहायता से अन्य वस्तुओं को भी रंधन किया जाता है, आग में निकलने कोई भी वस्तु आग में हम पकाने के लिए उस वस्तु में पानी भी अवश्य डालना पड़ता है रंधन पात्र में। तो इसलिए ये थोड़ा सा जल स्वच्छ जल भक्ति पूर्वक कोई भगवान को अर्पण करता है भगवान कहते कि मैं उसको भी स्वीकार करता, कुछ नहीं तो पानी तो अर्पण करो मुझे। जैसे अद्वैत आचार्य ने तुलसी पत्ता के साथ में पानी देते थे, पानी अर्पण करते थे भगवान को बिना, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को जब ये रघुनाथ जब ये चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज शिला को उपासना पूजा के लिए दिए इनको शिला, कहे कि ये जो रघुनाथ ये जो गिरिराज जी की शिला है ये जो शिला ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में इनकी सेवा करते रहना। जो साधारण शिला हम कोई सोचते हो वो साधारण शिला नहीं होता है, प्रतिमान हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन आप स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है। इसी रूप से भगवान को जो हम स्वीकार करते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि रघुनाथ एक कुंजा जल आर तुलसी मंजरी यही मत अष्टमंजरी दिवे जत्न करी, कही कि रघुनाथ तुम जो मुझे सालग्राम ने ये जो गोवर्धन शिला को पूजा करोगे तुम्हारे पास तक कुछ नहीं है, वैरागी आदमी हो लेकिन फिर भी एक कुंजा जल एक मिट्टी का कूलर में पात्र में जब राधा कुंड किनार रहता तो राधा कुंड की जल और कहीं रहते बस जो पवित्र जल चाहे पुरी में श्वेत गंगा की जब के समुद्र के जल में जल में मुझे स्नान वो गिरिराज को स्नान करा देना और एक जल का कूलर में जल वो गिरिराज के पास रख देना, और तुलसी की मंजरी चढ़ाना तो भगवान को, तुलसी का पत्ता कैसे ना, एक दुई दिगे दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, यही मत अष्ट मंजरी दिवे जत्न करी। एक कोमल मंजरी जो नया नया उगना उगता हुआ है तुलसी की मंजरी, और उसके दोनों साइड में दो पत्ते होते हैं, इसी प्रकार दोनों पत्ता के साथ बीच में मंजरी हो, ऐसे ही अष्ट मंजरी, इसको हाथ से आंगुली के सहारे काटकर तुलसी के पेड़ से कभी कोई कोई पत्ते को किसी अस्त्र शस्त्र की तरह नहीं काटा जाता है। भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिय केशवार्थं चुनोमि त्वं वरदा भव शोभने। भक्ति से प्रेम से तुलसी महारानी के से पत्र तोड़कर जब इसको भगवान को अर्पण करता है तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि इसी प्रकार दो दिग में दो पत्ता और बीच में तुलसी मंजरी, इसे अष्ट मंजरी दिव्य जत्न करी, बड़े जत्न के साथ प्रेम से गिरिराज जी को बा कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो जल की एक कूलर भगवान के साथ में रख दो बाजू में, हाँ ये शक्ति का सेवा है, और इसी से ही गिरिराज जी बाबा ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हम जानना चाहिए कि भगवान को हम ई वस्तु के माध्यम से, कुछ भी नहीं है तो इसी माध्यम से यदि कोई भक्त है और भगवान को ये वस्तु भी अर्पण करता है, पत्र पुष्प फल या जल, एक कोई भी वस्तु को भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भक्त होना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्लोक में ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि दो बार श्लोक में उपयोग किया, भक्त का शब्द उपयोग की गई है। तो इसलिए जब भी हम भक्त अपने को मानते तो भगवान को अर्पण करने कुछ नहीं है, तो ये सो वैरागी बा ब्रह्मचारी सन्यासी बा जो इसके पास कुछ धन नहीं है, पत्र पुष्प फल जल ये तो अवश्य भगवान को अर्पण कर सकता है। और भगवान कहते कि अस्नामी प्रयतात्म अस्नामी में खाता हूं, यदि कोई मुझे प्रीति पूर्वक वस्तु को अर्पण करता है तो मैं इसको अवश्य खाता हूँ। साग विदुर घर खाई, भगवान ने अपने भक्त विदुर के विदुरानी के हाथ से केला के छिलका भी खाए, हाँ केला केला से बाहर फेंका, मैंने वो विदुरानी ने इतनी भाव विहोल थी कि भगवान को बैठाई थी पेढ़ा के ऊपर लकड़ी के आसन में, लेकिन वो तो भगवान की मुखारविंद को निहारते हुए केला से फेंक रही थी नीचे, केला के छिलके भगवान को देते थे, भगवान वो भी खा जाते हैं, जो कि फल के जो ऊपर का अंग मैंने केला के छिलका कोई नहीं खाते, लेकिन भगवान वो छिलका भी खा रहे थे क्योंकि भक्त के हाथ से भक्त इसको अर्पण करता है। तो इसलिए ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से हमको भक्त होना चाहिए भगवान को अर्पण करने के पहले, अवश्य हमारे पास में यदि भक्ति की भावना है और हम भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान भावग्राही है, अवश्य भाव को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जो समय है मैं प्रश्नोत्तर के लिए कुछ समय रखा, और कोई भी किसी की कोई प्रश्न है तो
धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण भक्तों से निवेदन है, किसी का सवाल है तो अनम्यूट करके आप महाराज को पूछ सकते हैं। या फिर चैट विंडो में डालेंगे तो फिर मैं महाराज को पूछ सकता हूँ। नहीं महाराज भक्तों से कह रहे हैं
रेवतीपति प्रभु कोई प्रश्न है, यस राधेश्याम प्रभु किसी की कोई प्रश्न है।
महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम पत्रम पुष्पम फलम तो हम सबका इतना सुंदर शास्त्र को उदाहरण बताया, और प्रभुपाद जी की कृपा से भी भोग लगाने का जो विधि है और जो प्रोसेस है वो भी सभी मंदिरों में घरों में होता है। तो कई बार जो नए लोग आते हैं हम उनको ऐसा बताते हैं कि आप जो भी लेते हैं वो थोड़ा भगवान को भोग लगाइए पहले, प्राय हिंदू घरों में भगवान की तस्वीर रहती है तो वो लोग कभी माला भी नहीं करते हैं, उससे पहले भी हम उनको भोग लगाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और मतलब बाकी भी टीवी भी देखते हैं भगवान के ऊपर पूरी रूप से श्रद्धा नहीं है, तो इन लोगों का जो भोग लगाते हैं इनका मतलब क्या शुद्धिकरण होता है या स्वीकार करते हैं, ये बहुत बड़ा कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्योंकि इसमें
हम इनको भक्ति में जोड़ने के बाद भक्ति के प्रारंभिक शिक्षाएं इनको प्रदान करते हैं।
हाँ
चैतन्य महाप्रभु ने भगवान किसी मायावादी शून्यवादी ये लोग के साथ खाते नहीं, बरम हम देखते हैं गौरांग लीला में और नीता एक बार एक आए जो कि तांत्रिक बाबा जी के मैंने जो कि घर में प्रवेश कर गए थे और उसके घर में बैठकर खा महाप्रभु तो बैठे नित्यानंद भोजन कर रहे थे लेकिन वो व्यक्ति बार बार कहता था कि थोड़ा आनंद हो जाए आनंद हो जाए। महाप्रभु पूछते थे कि नित्यानंद को आनंद क्या होता है। नित्यानंद प्रभु तो सब जगह बहुत भ्रमण किए हैं तो उनको पता है आनंद का अर्थ मदिरा। ये तांत्रिक जोगी है, ये तांत्रिक व्यक्ति है, इसलिए वो सोच रहे कि थोड़ा आनंद मने मदिरा। महाप्रभु सुने ही बात को, हाँ बोले अच्छा मदिरा हमको अर्पण करना चाहता है। ये विष्णु विष्णु कहकर तुरंत ही वो गंगा में कूद गए हैं, गंगा में शांतिपुर पहुंचे। तो उसी प्रकार भगवान किसी निर्दोष व्यक्ति को वरण उसका घर में भोजन के वो शराबी होने पर भी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उसके घर में बैठ कर भोजन की। लेकिन वाले भगवान लेकिन सभी घर में भगवान ने कोई यदि निराकारवादी होता है द्वेषी व्यक्ति होता है भगवान के प्रति तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से कोई भोजन नहीं करते हैं। अवश्य जो भक्तों को आने कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए हमको अभी कभी इनको कुछ अर्पण करने बोलते हैं ठीक है, प्रारंभ से सीखेंगे है? जब इनकी अंतकरण में कुछ कुछ जानते नहीं तो आभास भक्ति से प्रारंभ करके फिर शुद्ध भक्ति के स्तर पर आएंगे। ओके,
तो ऐसे प्रचार के लिए जो लोग जिनके घर पे पूर्ण शुद्ध रूप से भोग नहीं बन रहे लेकिन शुद्धिकरण के लिए अगर उनको प्रेरित करते हैं कि आप जो भी लेते हैं थोड़ा भोग लगा के लीजिए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा तो और वो लोग प्रॉपर।
भगवान देखते कोई भी भगवान चाहते किसी को भी शुद्धि मुर्गारी को भी वो महान संत बना सकते हैं। प्रत्येक दिन पशुओं को काटने वाला व्यक्ति को वो फिर इतनी महान संत बनाए जो चिट्ठी की रात में मारने के लिए तैयार नहीं था। किसी मेन बात है कि प्रचारक के पास में भी शुद्धता होना चाहिए। हमारे पास में जो शुद्धता नहीं है हम किसी को शुद्ध नहीं बना सकते। हम किसी को बोलते हैं तो जो बात करने के लिए तो उसका आचरण भी हमारे साथ हमारे द्वारा होना चाहिए। अपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए। ये हमारे पास में शुद्धता है हम कितने बड़े नास्तिक व्यक्ति को भी भक्त बन सकता है। तो इस प्रकार आप व्यक्ति को भक्त बनाने की इच्छा से हमारे जो कंपैशन भावना को दया भावना को रखकर हम भगवान को उसके हित के लिए प्रार्थना करेंगे अवश्य उसके परिवर्तन होगा।
हरे कृष्ण। राधेश्याम दास महाराज जी, जैसे आपने भी आज बहुत सुंदर तरीके से रघु का उदाहरण दिया आपने, उन्होंने केले के पत्ते से कुछ धागा बनाकर भगवान के लिए हार बनाया, बहुत प्रेम से स्वीकारा उसको, इतना प्रेम से स्वीकारा कि बाकी हारों को हार नकार भी दिया भगवान ने। बहुत अच्छा लगा वो कथा आपने जो बताया। तो ये एक विषय तो हम लोग बहुत सालों से हम सुन कर आए हैं कि ना हम वेदे ना तपसा ना दाने ना चेज्जया शक्य विदो दृष्टुम दृष्टमान सीमाम्यता भक्त्या तो अनन्यया शक्या। भगवान सिर्फ भक्ति से ही प्रेरित होते हैं, ना तपस्या से नहीं, दान से नहीं, वेद से नहीं इत्यादि से, हमने सुना है इसे। मेरा एक प्रश्न था आपको कि ये जो भात जिसके बारे में आपका मूल विषय था आज आपके प्रवचन के, इसमें अनेक भक्तों का एक प्रश्न होता है कि हमने भक्ति के शुरुआत के दिनों में यह बात सुना, अभी 5 साल 10 साल 15 साल के बाद भी हम सुनते हैं, लेकिन ये भाव की डेवलपमेंट जो होता है उसमें धैर्य रखना, कैसे हम धैर्य रखें कि एक दिन ये भाव डेवलप होगा। अनेक भक्त लोग धैर्य को बैठते हैं और सोचते हैं कि अरे बहुत साल से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ऐसे भाव उदय होगा, लेकिन हमारा रूटीन चलता है लेकिन भाव उदय नहीं होता है। इसके लिए आपका सुझाव क्या है महाराज? क्योंकि हम ऐसे रघु जैसे हीरोज के बारे में सुनते हैं, आपने बोला आज विदुर की विदुरानी के बारे में सुना, अभी शबरी के बारे में सुना, रघु के बारे में सुना, ये सब लोग हमारे रोल मॉडल हैं, उनका फोटो लगा सकते हैं हमारे दीवार में, लेकिन हम खुद हमारे अंदर भाव कैसे पैदा होगा के लिए कितना समय धैर्य रखना होगा इसे।
इसीलिए जो सरलता सिंप्लिसिटी वैष्णविज्म कहा जाता है, तो सरलता होना चाहिए। कूटनीति कुटिलता हमारे हृदय में यदि है तो भगवान फिर हमसे दूर हो जाते हैं। तो हमें उत्साह निश्चय धैर्य से भक्ति ने भक्ति को कोई कोई एक सेकंड में थोड़ा समय में भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर सकता है महाराज खटांग की तरफ, या कोई ऐसे जन्म जन्मांतर भक्ति करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकता है। लेकिन उत्साह उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात स्वतो ब्रूते है सर्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। जैसे हमको रूप गोस्वामी ने शिक्षा दिया है तो उसके ऊपर हमें यदि विश्वास के साथ, मेन बात है कि विश्वास है, विश्वास सिंसियरिटी इज द की टू सक्सेस। कि तो हमें हम इसको विश्वास रहना चाहिए, यदि हमारे पास में विश्वास है तो विश्वास है पाई वे कृष्ण तर्क बहुत बहुत दूर, हमें इसको जुक्ति तर्क आर्गुमेंट के माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यदि उत्साही रहेंगे साधु गुरु शास्त्र के निर्देशन को सत्य जानते हुए उनमें पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ उसमें उत्साह के साथ निश्चय की भावना के साथ धैर्य के साथ, जब इनको फिर पूर्ववर्ती आचार्य में दिया गया जो मार्ग है इसको यदि हम अनुसरण करते रहेंगे तत्त कर्म संग त्याग और सत्संग को त्यागेंगे, जो वैष्णव के संग को त्याग कर वैष्णव की संगति में सदा रहेंगे और सत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, तो फिर जो साधु संग में रहकर भक्ति के लिए प्रयास करेंगे अवश्य हम प्राप्त एक दिन सफलता प्राप्त। इससे ही आशावादी बने रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। यदि कोई यदि वो आप नास्ते बने बहु हताश हो गया तो फिर वो कैसे क्या करेगा, तो आशावादी बने रहना चाहिए। महान भक्तों के उदाहरण को आदर्श को देखते हुए इस प्रकार उन्होंने जीवन में सफलता को हासिल किए। अवश्य हमको एक दिन अवश्य राखी हुए कृष्ण विश्वास पालन विश्वास रखते हुए आज जो कुछ भगवान करते हैं हमारी मंगल के लिए करते हैं ऐसे भावना रखकर जो हम आस्ते आस्ते प्रयास करेंगे अवश्य सफलता एक दिन मिलेगी। हो सकता थोड़ा कठिन, किसी को बहुत जल्दी मिलता है, किसको बहुत लंबे समय के बाद पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं कुछ रहता है अनर्थ की निवृत्ति होने में थोड़ा दूर समय दूर जो अधिक समय लगता है, लेकिन अवश्य एक दिन सिद्धि मिलेगा। ये विश्वास रखना चाहिए होगा एक दिन। विशेष रूप में चैतन्य महाप्रभु कहते कि भक्तों की आश्रय लो छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तार दास ठाकुर कहते हैं भक्त महाप्रभु कहते कि भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल बार बार सर्वशास्त्रे पुकारिया कहे यही तीन है ते कृष्ण प्रेम भक्ति है। सो वी डोंट हैव फेथ, हम जानते कि यही चीज बिना महत पद रजोभी से कम है राहु गण तपसा न जाती है ऑल दिस वर्सेस वी नो, हम उसको पता है सो, लेकिन विश्वास कर पाना ये बड़ा कठिन है। चरण का धूल लेना वैष्णव का चरणामृत पीना कि इनके अधरामृत खाना ये इतने आसान से नहीं हो पता है। हमारे अंतकरण की घृणा की भावना ये सब जाता नहीं है, कालिदास जैसे है वैसे भावना नहीं हो पाता, हम इसकी इमिटेशन भी नहीं कर सकते। इसलिए जब व्यक्ति सरल हो जाता है सिंपल हो जाता है उसके हृदय पूरा साफ कोई भी कपटता नहीं रहता है, तो निष्कपट होकर जब इस फिर वैष्णव की सेवा करता है अवश्य उसकी इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं है? लेकिन हमारे पास में योग्यता से होना चाहिए सिंप्लिसिटी। और कोई प्रश्न है राधेश्याम प्रभु? तो वो सभी प्रश्न की उत्तर तो जानते हैं लेकिन दूसरों के लिए फिर भी वो जिज्ञासा करते हैं। और कोई प्रश्न है
महाराज? कुंज बिहारी से भक्तों का एक प्रश्न है, एक कुंज बिहारी प्रभु जी के नाम से क्वेश्चन हो कुंज बिहारी टेम्पल।
हरे कृष्ण महाराज, अदंडत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रम पुष्पम फलम ऊपर ये क्लास देने के लिए। मेरा प्रश्न था महाराज कि मंदिर में हमारे बहुत किचन रहते हैं, लाइक भक्त का किचन और भगवान का किचन, तो दोनों जगह हम भोग बनाते हैं भगवान को।
मुझे
आवाज कट हो गई बीच में,
नहीं आवाज आ रहा तो मैं सुनाई पड़ रहा।
हमको बोले
महाराज हम वेट करेंगे। एक और प्रश्न है महाराज चैट के ऊपर, एक
भक्त बोलो, मैंने सुना ही पड़ रहा, बोलियो
महाराज। एक प्रश्न, एक प्रश्न ऐसा है कि हमको कहा जाता है कि भगवान को बेस्ट से बेस्ट चीज, अच्छा से अच्छा चीज भगवान को देना चाहिए, और हमको ये भी सिखाया जाते सिखाया गया कि भला न खाइबे, तो ये दोनों कैसे बैलेंस करना चाहिए महाराज? एक सवाल ये महाराज,
भला ना खाइबे भला ना पारिबे, तो भगवान को हम अच्छा खिलाएंगे? गोस्वामी लोगों की उदाहरण को हम देख सकते हैं भगवान को, तो भगवान के लिए अवश्य, यदि आपके पास नहीं है तो भगवान को कहेंगे, वो अपने व्यवस्था कर लेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मुझे लफड़ा व्यंजन और भात साग भात मुझे दे दो, आप लोग सब पिठा पणा ये सब खाया, जो अच्छे प्रसाद आप लोग खाते हो। तो इसी प्रकार हमें जिह्वा को संयमित करने के लिए, यदि हम भगवान को अर्पण करते हैं सबसे अच्छे अच्छे पदार्थ, विशेष रूप में जो ब्रह्मचारी है और सन्यासी है, इनको अवश्य जिह्वा के ऊपर संयमता को संयमता रखना चाहिए। हमें प्रभुपाद जी पहले बहुत स्वीट गुलाब जामुन खिलाते थे हिप्पियों को, लेकिन बाद में जब भक्ति में वो दीक्षित हो जाते हैं संन्यास आश्रम में आ जाते, फिर भगवान कहते किसी को छोड़ो, अभी मिठाई मत खाओ। तो इसलिए हमें जिह्वा और लालसा को थोड़ा सा संयमित करना पड़ेगा, नहीं तो जिह्वा और लालसा घेनी इति उति धाय शिष्ण उदर परायण कृष्ण नाही पाए, चैतन्य महाप्रभु कहे। खाली हम यदि महाप्रसाद सोच कर रहे, लेकिन जिह्वा हमारे महाप्रसाद की रूप में उसके प्रति इतनी आसक्ति नहीं है, लेकिन जिह्वा को तृप्त करने के लिए, यदि केवल जिह्वा को तृप्त करने के लिए हमें अच्छा अच्छा वस्तु सोच कर खाएंगे, महाप्रसाद प्लेट से भी हम, मुझे पकौड़ा चाहिए, मुझे रसगुल्ला चाहिए, केवल उसी को चाहिए हम साधारण से हैं जो हमको अच्छा लगता है, ऐसे भावना नहीं होना चाहिए। आप वो वाल्मीकि की कहानी सुने, वो किस प्रकार सब कुछ मिलाकर खिचड़ी बनाकर खाया, सब कुछ महाप्रसाद है, महाप्रसाद खाने की भावना हमारे मन में होना चाहिए। लेकिन जिह्वा के स्तर से बॉडीली प्लेटफॉर्म से थोड़ा ऊर्ध्व में आना चाहिए। हम जो कुछ महाप्रसाद की अर्पण करते हैं पूरे भावना के साथ, दिव्य भावना के साथ, जानना चाहिए कि कृपा है, भगवान की कृपा, भगवान से अभिन्न है। तो ऐसे ही भावना के साथ जब हम महाप्रसाद स्वीकार करते हैं तो हमारे वो महाप्रसाद की कार्य करता है। जब हमें इसको जिह्वा के तृप्त करने के लिए अच्छा अच्छा स्वादिष्ट वस्तु खाने ऐसे ही सोच कर खाते हैं, तो फिर वो हमारे चेतना को शुद्ध नहीं कर पाता है। उस वस्तु खा फिर भी हमारे मन में ये भावना जिह्वा लालसा इति उति धाय शिष्ण उदर परायण है, तो इसलिए हमें बड़े सतर्कता के साथ जो महाप्रसाद को भी स्वीकार करना चाहिए, जितनी आवश्यक है, अनावश्यक अत्याहार नहीं करना चाहिए। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्भीर भक्ति विनश्यति, तो सब साधारण इंस्ट्रक्शन होने पर भी ये सब सभी समय हमें स्मरण कराता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कोई प्रश्न है? ओके, समय हो चुका है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद है भक्त लोग श्रवण करने के कारण।
महाराज दंडो प्रणाम महाराज, इतने अच्छा क्लास दिया आपने, पत्रम पुष्पम फलम तो सब एग्जांपल के साथ। जन्माष्टमी का त्योहार है, साधारण तो सब भागवतम ये कृष्ण पुस्तक से बात करने के प्रयास करें, लेकिन अब भगवत गीता सुंदर से श्लोक लेके भक्ति के बारे में समझे महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और जैसे लॉकडाउन हो जाएगा वापस पुनः आके हम आपका संग दीजिए महाराज। तो आइए महाराज को हम अपने पारंपरिक पद्धति से तीन बार हरि बोल कह के हमारा कृतज्ञता प्रकट करेंगे। हरि
बोल, हरि
बोल, हरि बोल, धन्यवाद
प्रभुदयानंद महाराज की
जय,
जय। टेम्पल अनाउंसमेंट से जन्माष्टमी के बारे में, क्योंकि दो मिनट आ रही है, जन्माष्टमी के फेस्टिवल का स्केड्यूल ऑलमोस्ट फाइनल हुआ है, एक मिनट में शेयर करूंगा आपके साथ, आप देख सकेंगे तो स्क्रीन पे। जन्माष्टमी के दिन पूरा पैकेज सुबह से लेकर ये सभी कार्यक्रम जूम और यूट्यूब दोनों दिखाएंगे, 4:30 बजे से लेकर मंगल आरती, उसके बाद जपा दर्शनारती गुरु पूजा 8:15 बजे से लेकर 10 बजे तक इस ग्रेस सार्वभौम प्रभु के द्वारा भागवतम कथा, उसके बाद श्रीमान राधेश्वर प्रभु जी की क्लास करीबन 11:30, उसके बाद 12 बजे से लेकर 2 बजे तक करीबन 20 भक्त हैं, कांग्रीगेशन डिवोटी हैं, इनके घर में जन्माष्टमी मनाएंगे भक्त, तो उनका लाइव विजिट हम देखेंगे। उसके बाद दो बजे से लेकर करीबन 7 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम्स, अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स जो पिछले वर्ष किए गए थे उनको रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, और उसके बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कीर्तन। तो ये प्रोग्राम जूम और यूट्यूब पे दोनों पे अवेलेबल रहेगा पूरा दिन, और शाम को 10 बजे लेकर यूट्यूब पर सिर्फ भगवान का अभिषेक, 10 बजे लेकर भोग ऑफरिंग और रात को महाआरती। और दूसरे दिन प्रभुपाद जी का जो व्यास पूजा फेस्टिवल है उसका भी स्केड्यूल पूरा दिन आपको जूम और यूट्यूब पे अवेलेबल है। मॉर्निंग प्रोग्राम कम्प्लीटली अवेलेबल है और लाइव। उसके बाद करीबन देखिए आप 10 बजे से भजन शुरू होंगे, 10:30 से 12:30 तक प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा रिकॉर्डिंग किया हुआ ऑफरिंग, पुष्पांजलि 12:30, 1 बजे प्रसाद, और 4 से 7 बजे कांग्रेगेशन भक्तों ने जिन्होंने ऑफरिंग दिया है उनमें से अच्छे गिने चुने अच्छे ऑफरिंग को सिलेक्ट करके उनके घर घर पे जूम कैमरा लेके जाएंगे, और वहां अपने घरों में वो अपने ऑफरिंग प्रभुपाद जी के सामने वो पढ़ सकेंगे। और 7 से 8 प्रयास किया जा रहा है कि परम पूज्य लोकनाथ महाराज द्वारा कीर्तन का आयोजन करने का। तो ये दोनों दिन का अच्छा प्रोग्राम है, ये एक्चुअली SMS द्वारा भी प्रकट किया जाएगा। तो इतना ही है, और किसी को कुछ अनाउंसमेंट किसी को करना है किसी डिपार्टमेंट को तो कृपया आप हाथ रेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, सबको धन्यवाद। His Holiness Prabodhananda Saraswati Maharaj ki jai, Shri Shri Radha Kunj Bihari, Shri Shri Radha Vrindavan Chandra Bhagwan ki jai, Srila Prabhupada ki jai।